अब एक सवाल ये आया है कि अगर कोई चीज कहीं खाने की हमें पसंद आए तो क्या फिर हम नहीं कह सकते कि हमें वो दे दें? तो इसमें जो है वो सब्र अच्छी चीज है वैसे, क्योंकि जैसे जो दोस्त हैं या जो रिश्तेदार करीबी होते हैं उनको पता भी होता है कि आपको कौन सी चीज पसंद है ना, और अगर गुंजाइश होगी तो वो आपको जो है वो खुद दे देंगे। तो इसमें इसको ना आदत और रूटीन लाइफ नहीं ये बनानी चाहिए कि मांगना शुरू कर दे, और मतलब बेहतर यही है के ख्याल रखें हम इस बात का। और जो है वो सलाम करने के बारे में आप देखें, हमारी एक बहन क्या कहती है।
कुछ अर्से पहले हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में होते थे, तो ईद का टाइम था, मतलब सुबह का ही वक्त था, सब तैयार हुए हुए, सब मैं और मेरी देवरानी, हम थे दुपट्टे उतार के और किचन में कुछ कर रहे थे, वो ईद मिलने सब आ रहे थे और हम लोग तैयारी होने लगे। अचानक एक उनकी आदत है, खैर वो हम लोग के रिश्तेदारों की, वो अचानक आए और आके बिल्कुल किचन के दरवाजे के अंदर जाके अस्सलाम वालेकुम, और जो हम दो इसलिए कि दुपट्टा नहीं तैयार हुए, तो उस वक्त मतलब ये एहसास हुआ कि इस तरीके से जायज नहीं। ठीक है, मतलब शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फैमिली में इस तरह, एक तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्लिक हुआ कि मतलब बच्चों में या सब में ये चीज होनी चाहिए। दूसरी, जब पहली दफा हम यहाँ पर आए कैनेडा में, जब आए तो उससे उसी के घर पे हम ठहरे थे, रात को रुके, जहरे देर से सफर भी लंबा था, अभी रुके उन्होंने कमरा दिया हुआ था, बच्चे नीचे थे और जहर हम दोनों मियाँ भी। अब वो सुबह बगैर नॉक किए दरवाजा खोल के सीधा अंदर, मेरी तो मेरी मियाँ हालांकि सोए हुए थे थकावट से, मगर मैं जो उठ के बैठी ना, दुपट्टा जाहिर उस वक्त तो कुछ नहीं था, तो उस वक्त मुझे जैसे और ज्यादा मेरे में वो हो गई कि बच्चों में बड़ों में इस चीज की बहुत, उस वक्त कुरान की आयतें नहीं पड़ी थी, मगर अब जब बार बार ये चीज आती है तो मुझे वो वाकया याद आते हैं कि बाज़ औक़ात हम औरतों को पता होता है, बस इन चीजों का पता मर्दों को और बच्चों को नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगर इस आयतों को पढ़ के ये हुआ कि इन चीजों की ज्यादा कसरत होनी चाहिए।
तो इससे क्या बात पता चलती है कि एक तो ये कि हम अपने घर वालों को ये बात बताएं, उनको एजुकेट करें, अपनी सोसाइटी, अपने खानदान, अपने बच्चे के इजाजत लेके जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि सलाम करना उनको हम सिखाएं, है ना, और सलाम के लिए भी है कि उसके सही अदायगी का तरीका जो है हम उनको सिखाएं, ताकि अच्छे तरीके से जो है फिर वो सलाम करें और रहमत जो है वो हम पर नाजिल हो सके। तो अब इसके बाद जो है, अब जो आगे आदाब हैं जो आयत नंबर 62 में और 63 में, ये जो दो आयतें हैं इसमें आदाब है कि महफिल के अंदर जो है ना उसमें बैठने के आदाब क्या हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू माहू अला अम्र, इन्नमल मोमिनूना, इसके सिवा नहीं है मोमिन, या आप यूं भी कह सकती हैं कि ईमान लाने वाले ही वो मोमिन हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या बता रहे हैं कि ईमान लाने वाले ही असल में मोमिन हैं, जो कि इन्नमल मोमिनूना इसके सिवा नहीं, अल मोमिनूना ईमान लाने वाले, अल्लज़ीना वो लोग, आमनू जो ईमान लाए हैं। तो मोमिन कौन है? जो कि दरअसल ईमान लाए हैं। अब इतना भी काफी था कि मोमिनून कह दिया, लेकिन फिर साथ में आमनू आया, तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि असल में मोमिन या ईमान लाने वाले कौन हैं? जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। वाइजा कानू माहू, और जब जो है वो इकट्ठे होते हैं उसके साथ, वाइजा कानू, और जब वो होते हैं वो सारे ईमान लाने वाले जो मोमिनीन हैं, माहू उसके साथ से मुराद कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो जमा होते हैं, अला अमरिन, किसी काम पर, जामेन जो इज्तमाही काम है, यानी जामेन से मुराद क्या है, यानी ऐसे काम पर जमा होते हैं कि जामेन जिसके लिए मजमा किया गया है, जो मतलब किसी साथ बहुत से लोग जमा हैं, इज्तमाही को काम है उसके लिए वो जमा होते हैं, लम यजहबू, तो वो नहीं जाते, हत्ता यस्ताजिनू, जब तक के वो उससे इजाजत ना ले लें, यानी जब तक वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ना लें तो महफिल से उठकर जो है वो नहीं जाते। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, और बेशक वो लोग जो आपसे इजाजत मांगते हैं, एक तरफ तो ये कहा ना कि वो ईमान लाने वाले जो हैं ही वो जो अल्लाह रसूल पर जो ईमान लाए हैं, कि जब किसी इज्तमाही काम के लिए वो जमा हैं तो जब तक वो रसूल अल्लाह से इजाजत ना लें वो जाते नहीं। दूसरी तरफ ये है कि इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूना का, तो जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं उलाइकल्लज़ीना यूमिनूना बिल्लाहि व रसूलि, वही अल्लाह और रसूल के जो है वो मानने वाले हैं। तो गोया के ऐसे मौकों पर इजाजत लेना ये ईमान की निशानी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान की निशानी है। फाइजस्ता जनून का, बस जब आप उन्हें इजाजत दे दें, फाइजस्ता जनून का लिबादशानहिम इनके बाज कामों के लिए, गोया के यानी अब उन्होंने इजाजत मांगी और ऐसे मौकों पर आप उनके किसी काम के लिए उनको इजाजत दे दें तो फिर मामला क्या होना चाहिए? फाजल्ली, आप इजाजत दे दें मन शेता मिनहुम, जिसको आप चाहें। अब ये नहीं हो सकता हर इजाजत मांगने वालों को आप इजाजत देंगे। बस तक्सिल्लाहुमुल्लाह, और फिर वो लोग जिन्होंने इजाजत मांगी आपने उनको इजाजत दे दी तो उनके हक में आप क्या करें? दुआए मगफिरत करें। मुनासिब समझे तो इजाजत दें, मुनासिब समझे तो इजाजत न दें। और जब जो है आप उनको इजाजत दे दें तो इजाजत देने के बाद उनके लिए जो है वो अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगे, क्योंकि उनका ये जो इजाजत मांगना है अल्लाह जानता है ना सही मामला क्या है, उजर उजरे शरई है या नहीं है, देखा देखी सा या ऐसे ही बहाना बनाकर निकलना चाह रहे हैं। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये जो आयत है ना ये बड़ी अहम आयत है, और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को जिंदगी का महफिल का मजलिस का एक बड़ा अहम अदब जो है वो बताया है। और अब आप देखें कि ईमान लाने वालों के ईमान की ये निशानी है, ये उनके ईमान की अलामत है। ईमान किस पर? अल्लाह पर और उसके रसूल पर। कि हम तो ईमान किसको समझते हैं, मुसलमान किसको समझते हैं? नमाज रोजा हज जकात, यहां तक हमने ईमान को महदूद किया हुआ है। खाने पीने की बात है, घरों में इजाजत लेने की बात है, सलाम करने की बात है, ओढ़ने की बात है, हिफ्ज़ फ़ुरूज की, गस्ल बसर की, जो भी बात है ये सब ईमान के तकाजे हैं। और उनमें से एक अहम तकाजा क्या है कि असल में ईमान लाने वाले लोग वो हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं। वाइजा कानू माहू, जब अल्लाह पर ईमान ले आए, उसके रसूल पर ईमान ले आए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा और वो उसके साथ जमा हो गए, वाइजा कानू माहू, वो रसूल के साथ हैं। तो अब आप देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इज्तमाई कामों के लिए सहाबा को बुलाते थे, क्योंकि यहाँ पे है ना अला अमरिन जामेन, ऐसे काम के लिए जो इज्तमाईयत का है, जामेन जमा है जिसमें सारे, और जमा की किस मौके पे सहाबा होते थे? कभी जुमे की नमाज के लिए, कभी ईदैन के लिए, कभी जिहाद के लिए, कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मजलिस मुशावरत यानी ऐसी आप मीटिंग्स जो थे उनका इनकार करते रहते थे कि कहीं जो है वो जंग ना हो जाए, कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे। आपने जब मदीना गए तो मीटिंग की कि कैसे मदीना का दिफा किया जाए, आपने मीटिंग की कि जो मुहाजिर जमा हो गया मदीना में अब उनके मुआश के मसले को कैसे जो है वो हल किया जाए। तो कभी आपकी जो मीटिंग और मुशावरत होती थी ये अमन के हालात से उसका ताल्लुक होता था, कभी जंगी हालात से ताल्लुक होता था, कभी मीटिंग में आप किसी का इंफरादी मसला डिस्कस करते थे, कभी किसी का इज्तमाही मसला करते थे। तो डिफरेंट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बातों के लिए कामों के लिए जो थे वो मीटिंग कॉल करते थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब भी ईमान लाने वाले प्यारे रसूल के साथ हों किसी ऐसे काम पर जो इज्तमाईयत का हो, लम यज़हबू, वो नहीं जाते, हत्ता यस्ताज़िनू, जब तक के वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो इजाजत ना ले लें। तो मुफस्सरीन की एक राय तो ये है कि इस आयत में मोमिनों को, सहाबा को कहा जा रहा है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं उनको और वो किसी काम के लिए जमा हों तो रसूल की इजाजत के बगैर सहाबा को वहां से नहीं उठना चाहिए। दूसरी जो इसके बारे में राय है वो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये हुक्म जो है ये आपके जानशीनों का, जैसे खुल्फाए राशिदीन थे, या फिर इस्लामी निज़ाम जमात के जो अमीर हैं, ये उनके लिए भी है, या फिर जैसे किसी मस्जिद का कोई इमाम है, कोई आलिम है, या किसी भी महफिल का, या कोई सदर मजलिस है, कोई भी महफिल है, कोई मीटिंग है और उसमें बुलाया गया है और उस मीटिंग को जो कंडक्ट करा रहा है, जो सदर मजलिस है, जो भी इंचार्ज है, जो जिम्मेदार है, तो जब वो मीटिंग कॉल करे, जब वो इज्तमाई मकसद के लिए मुसलमानों को जमा करे, खा वो जंग का मौका हो या अमन का मौका हो, बहरहाल आम मुसलमानों के लिए भी ये उनको इजाजत नहीं है, उनके लिए जायज नहीं है कि वो सदर मजलिस की, अमीर की, नाजिम या नाजमा की, जो है वो अमीर या अमीरा की इजाजत के बगैर वहां से उठ जाएं या मुंतशिर हो जाएं। जब तक वो इजाजत न ले तो वो वहां से उठ नहीं सकते। आप सोच लें, फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूना का, बेशक जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं, ये कौन लोग हैं? उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ये वही तो हैं जो अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। तो जब अल्लाह और रसूल के ये मानने वाले हैं तो फिर ये इजाजतें क्यों मांगते हैं? असल बात क्या है कि जब इज्तमाइयत के काम के लिए उनको बुलाया गया है, अब वो सब लोग जमा हैं, तो इज्तमाइयत का काम तो कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी मांगता है सारे मुसलमानों की सलाहियतों की, उनके औकात की, उनकी भूख प्यास की, उनके माल की, उनकी ज़हनी सलाहियतों की, है ना? तो अब अहले ईमान जो हैं, उनका काम क्या है कि जब उनको बुलाया जाए तो उनको इज्तमाइयत के काम के लिए आना चाहिए, और जब वो आए हैं तो फिर वो इजाजत क्यों मांगते हैं? अभी काम तो खत्म नहीं हुआ, जो मीटिंग कॉल की थी अभी वो खत्म ही नहीं हुई, तो वो इजाजत क्यों मांगते हैं? ये वही लोग इजाजत मांगने वाले हैं जो अल्लाह रसूल के मानने वाले भी हैं। तो गोया के यहाँ पर कहने का अंदाज क्या है कि उनको सुचवाया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है कि तुम्हारे सीनों में दिल है, दिलों में ईमान है, और ईमान भी कैसा है? नूर नला नूर, है ना? तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ईमान तो इंसान ले आए और इज्तमाइयत के काम के लिए जमा हो, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां से जो है ना वो उठना चाहे, या उस इज्तमाइयत के काम पर वो अपनी इंफरादी काम को या अपनी जात को अहम जाने। क्या कहा? इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूना का उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तो जो लोग ऐसे मौके पर आपसे इजाजत मांगते हैं, हकीकत में यही हैं जो अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, ईमान लाकर महफिल में आए हैं ना। तो अब ये शिरकत में, जो शिरकत करनी है महफिल में, मीटिंग में, उससे माजूरी का इजहार करते हैं। मुनाफिक ऐसा करते थे, है ना? और या फिर ये कि मुनाफिक किस लिए महफिलों में आते थे? जैसे जूं ही कोई आयतें नाजिल होती, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बाज़ औक़ात मस्जिद में ऐलान करवा कर, अजान दिलवा कर लोगों को जमा करते और फिर वो अहम आयतों को सुनाते। कभी कोई भी खास हालात ऐसे होते आप लोगों को जमा करते, लोग आते। तो अब ये कि बाज़ तो आते ही नहीं थे, है ना, लेकिन जो मुखलिस सहाबा थे वो जमा होते थे, और मुनाफिक कहते थे आ तो गए हैं अब क्या करें, है ना? तो क्या कहा कि यानी ये वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, फाइजस्ता जनून का, बस जब ये आपसे इजाजत मांगे, फाइजस्ता जनू का, जब ये अपने किसी काम से इजाजत मांगे, तो अब साथ ही क्या बात बताई जा रही है कि वाकई इनको कोई हकीकी जरूरत है, इनका उजरे शरई है ना। अब जब तक वो जाते नहीं तो उनका मसला हल नहीं होता, अगर इनका कोई ऐसा जरूरी काम है और ये उसके लिए इजाजत मांगे तो पहले तो कह दिया ईमान लाए हैं और इजाजत मांगते हैं, यानी इजाजत ना मांगा करो जब इस्तेमाइयत के काम के लिए इकट्ठे हो। साथ ही कहा कि अच्छा वाकई अगर उजरे शरई है, कोई हकीकी उजर है कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो जब इजाजत मांगे लिबाद शाने हिम, अपने बाज कामों के लिए। अमर जो है ना काम को कहते हैं, अमर काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी तरह का काम, छोटा बड़ा खास आम, जो शान है ना ये खास काम को कहते हैं, शान यही इसका रूट है। और इसके मानी क्या होते हैं, ऐसा काम जो उसके शाने शयान हो, मतलब उसके बगैर अब वो काम कर ही नहीं सकता, वो जरूरी खास काम है। तो अगर वो अपने जरूरी काम के लिए इजाजत मांग रहे हैं, अब आप देखें कि गोया के वो बगैर उजरे शरई के और हकीकी जरूरत के उनको इजाजत मांगनी नहीं चाहिए, जिस काम को बहुत जरूरी समझ रहे हैं उसके लिए वो इजाजत तलब कर रहे हैं। अब हो सकता है वो उनके लिए तो जरूरी हो, लेकिन प्यारे रसूल से क्या कहा जा रहा है, फाज़ल्ली मन शेता मिन्हुम, फिर आप जिसे चाहे इनमें से इजाजत दे दें, फाज़न बस आप इजाजत दें, लिमन उसमें से जिसको शेता तुम चाहो। शेता का रूट क्या है, चीन शेई, शेई के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो रूट है शीन या हमजा, है ना, और मानी इसके क्या है, चाहना। तो अब क्या है कि फाजन आप इज्न दें, इजाजत दें, लिमन जिसके लिए भी शेता आप चाहें, मिन्हुम इनमें से। अब देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ये बात छोड़ दी, वो तो जरूरी समझ रहा है उस काम को, अगर आप जरूरी समझे तो इजाजत दें, वरना इनको जो है वो इजाजत ना दें। तो अब इजाजत देने या ना देने का फैसला कि किसकी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाबदीद पर जो है वो छोड़ दिया गया। तो रसूल अल्लाह के बाद ये इजाजत जो है ना, इजाजत दी जाए या ना दी जाए, ये अमीर मजलिस को है, अमीर महफिल को है, और जो है वो इजाजत दे या ना दे। क्यों? इसलिए इज्तमाई जरूरत जो है वो इंफरादी जरूरत की निस्बत मुकद्दम है। तो अमीर नाजिम, अमीरा या सदर महफिल या उस्ताद जो एक पूरी क्लास को लेके चलता है, तो वो ज्यादा जो है वो समझता है, ये उसको पूरा हक हासिल है वो इजाजत दे या ना दे। इस सूरत में महफिल में शिरकत करने वाले, मजलिस में, मीटिंग में शिरकत करने वाले, किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी मोमिन को जो ईमान लाने वाला है ना उसको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उस्ताद ने फलां को तो इजाजत दी, मुझे क्यों नहीं इजाजत दी। मैं हॉस्पिटल जाऊं वहां पे, तो अगर वो जरूरत कोई और बंदा पूरी कर सकता है, कहीं हॉस्पिटल में किसी को कोई काम है, आपने साल दो साल के लिए एक एग्रीमेंट किया है अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और इस्लाम से कि आप दीन सीखेंगी, तो आपको अपनी एक्टिविटीज को कम तो करना है, काटना है ना। और आप ये समझती हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, या ये कि चलो मैं बाद में ऑनलाइन सुन लूंगी, वेबसाइट पे तो सारा लेसन आ जाता है, आप जहीन हैं, आप पढ़ के भी पूरा हो सकता है कर ले, हो सकता है आप किसी के नोट्स देख लें, लेकिन आप सोचें कि पूरी क्लास की शान और शौकत में फर्क पड़ता है, एक बंदा नहीं आता ना, आपकी क्लास में जो हैसियत है वो सारे लोगों का जो दमखम या क्लास की जो रौनक है या उनका जो दिल लगना है उसमें फर्क पड़ने लगता है। यानी कोई लश्कर है उसमें बहुत से लोग जा रहे हैं, तो एक साहबी के बारे में आते हैं, माजूर थे, अंधे थे, अब उन वो ना नहीं जाते, उनको इजाजत थी क्योंकि उनको उनके लिए रियायत है, सूरह तौबा में आप पढ़ी चुके, इसके बावजूद ही वो कहते थे और कुछ नहीं, मुझे एक जगह बिठा देंगे ना, मैं झंडा लेके बैठा रहूंगा, मैं झंडा लेके बैठा रहूंगा, और फिर और कुछ नहीं कि मेरे जाने से मुसलमानों की नफरी में इजाफा हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नोट्स नहीं लेते, कुछ भी नहीं, लेकिन इस्लाम के रास्ते के में एक महफिल सजाई गई है, कुछ दिनों की बात है, बहार के दिन है, तो आप सबको भी अपना जायजा लेना चाहिए कि कितनी दफा आपने छुट्टी की और बगैर उजर के छुट्टी की, और उजर तो था, हकीकी उजर नहीं था। आप उस काम को 2 बजे के बाद कर सकते थे, आप छुट्टी के जिन दिनों क्लास नहीं है, 3-4 दिन सिर्फ जो क्लास होने वाली है, बाकी औकात में आप कर सकते हैं, है ना, और ये 2 साल के बाद आप कर सकते हैं, तो क्यों ना आप डट कर लग कर क्लास के लिए पिलर बन जाए, सतून बन जाए, खुद सीखें, क्लास को सिखाएं, क्लास के कामों में वॉलंटियर अपने आप को पेश करें। एक बात याद रखें, इंफरादी काम पर इज्तमाईयत का काम कई गुना अहमियत रखता है। यदुल्ला अलल जमात, जमात पर अल्लाह का हाथ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो शख्स जन्नत के वस्त में घर बनाना चाहता है उसको अल जमात से जुड़कर रहना चाहिए। जन्नत के दरमियान में घर लेने के लिए इज्तमाईयत के साथ जुड़कर रहना। अब जो लोग आ सकते हैं वो ऑनलाइन क्यों पढ़े, सोबत सवाले के असरात है ना, मिलकर बैठकर देखकर सीखना। और आपने आपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियों में फिर आपने जो है वो खतो कताबत के जरिए क्यों नहीं डिग्रियां ली, है ना? आपने कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन कोर्सेज क्यों नहीं लिए? आप कहते नहीं मां जाके पढ़ना है, आप सीखते हैं। जहां दुनिया की बात होती है तो आप देखें कि हम क्या करते हैं, जहां दीन की बात होती है तो हम क्या करते हैं। तो अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें कि 1.5 साल के अरसे में कितनी मीटिंग थी और उसमें मैं क्यों नहीं आई, और आई तो देर से आई, आई तो फिर मैं साथ ही जो है वो पूरी मीटिंग का माहौल जो है मैंने मुतासिर किया कि मैं जाऊं, मेरा मुझे बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जल्दी है, मैं निकल जाऊं, मैं आ ही नहीं सकती। जब एक नहीं आ सकता तो दूसरे भी नहीं आना चाहते, है ना? तो एक बात याद रखें, इज्तमाईयत के जितने भी काम है, जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी इस्लामी इदारे हैं, जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूट हैं, वो बगैर कुर्बानी के नहीं चलते। जब तक हम अपनी इंफरादियत को जो है वो गुम नहीं कर देंगे इज्तमाईयत के लिए और अपनी इंफरादियत की कुर्बानी नहीं देंगे, तो उस वक्त तो जो तक जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो रोशनी नहीं होगी, उस वक्त तक दीने इस्लाम जो है वो फले फूलेगा नहीं, है ना? तो जरूरत है इस बात की कि हम जो है इसकी कुर्बानी दें। और यहाँ पे आप सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुमने बुलाया, ईमान लाने वाले हैं और इजाजत मांगते हैं, और फिर ये भी कहा अच्छा वो इजाजत मांगते हैं, तुम्हारी मर्जी है चाहो दो या ना दो। तो जब उस्ताद या कोई नाजिम या अमीर या अमीरा किसी को इजाजत ना दे तो फिर नाराज क्यों हुआ जाए कि हमें तो इजाजत नहीं दी, कैसे कारकुन है, कैसे तालिब इल्म है, है ना? और आप देखें कि मस्जिद में जुमे की नमाज है, ईदैन का मौका है, अगर उसमें कुछ लोग वॉलंटियर अपने आप को पेश नहीं करते तो आप देखें ईद की नमाज में मेले का एक मंजर पेश हो रहा होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई नज्म व ज़ब्त नहीं, जुमे के टाइम पे भी यानी वो तालीम नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे जैसे किसी पार्क में गए हुए हैं, किसी मेले में गए हुए हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर इधर उधर, बाद में भी सब चीजें हो सकती हैं। तो हर महफिल के कुछ अदब आदाब है, तो जब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, मुशावरत करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, पिलर बन जाते हैं उस इस्लामी इज्तमाईयत के लिए, तो ये उनके लिए क्या चीज है, सदका जारिया बन जाती है। ये चीज भी सदका जारिया है और बड़े अजर की बात है। कोई भी चीज जो सामने आती है, ये कंप्यूटर जो यहाँ पड़ा हुआ है इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, वेबसाइट पर जो लोग लेक्चर सुनते हैं बहुत से लोगों का हाथ है, पैसा है, बहुत से लोगों का दिमाग है, बहुत से लोगों की रातों की नींदें हैं, बहुत से लोगों की कुर्बानियां हैं, है ना? तो कोई भी काम है इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, तो मैं और आप क्यों ना हो, और अगर हम फिर कोई कमिटमेंट करें तो फिर पीछे क्यों होना, अपने काम को करना। और फिर अपना जो भी काम है उसके लिए क्या है, कोशिश करें कि हम इंफरादी काम बाद में करें। और आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, मैं इस बात पे गौर कर रही थी, आप जिसको चाहे इज्तमाईयत के काम से आप समझते हैं तो इजाजत दे दें, लेकिन वस्तग़फिरल्लाह, अल्लाह ताला से ऐसे लोगों के हक में दुआए मगफरत करें। क्यों कहा, ये एक तरह की डांट है, ये एक तरह की तंबीह है। उन्होंने इजाजत तलब क्यों की, अगर इजाजत मांगी तो कोई बहाना बाजी तो नहीं थी, ऐसा ना हो कि इजाजत मांगी तो हकीकी उधर था ही नहीं, अपॉइंटमेंट डॉक्टर की बाद में भी ले सकते थे, मॉल में बाद में भी जा सकते थे, बच्चों के साथ जो प्रोग्राम बनाया था छुट्टियों में भी कर सकते थे, आगे पीछे कर सकते थे। जब भी इस्तमाईयत का कोई काम होता है, हर शख्स अगर अपनी बात को लेके बैठ जाए तो मीटिंग में जो है वो जंग बाजार का, वो फैसलाबाद का जंग बाजार या लाहौर की अनारकली या कराची की अनारकली का मंजर तो पेश हो सकता है, मीटिंग में आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। हर शख्स कहता है कि अगर आप मीटिंग रखना चाहते हैं, वो एक शख्स कहता है बुध सूट नहीं करती, दूसरा कहता है जुमेरात का तो सोचे भी ना, तीसरा कहता है वीकेंड, ना भी ना वीकेंड ये तो हो ही नहीं सकता, 10 बजे ये नहीं हो सकता, 12 बजे मैं नहीं कर सकती। यानी गोया के एक मुश्किल खड़ी हो जाती है कि मीटिंग कॉल कैसे की जाए, और कोई शख्स कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। कुछ को तो कुर्बानी देनी है ना, अपने औकात की, अपने इनफरादियत की। या फिर ये कि अब क्लास के टाइम तय हो गए, शुरू दिन में ही, शुरू की क्लासेस में टाइमिंग और दिन और चीजें, जब शुरू किया था तो मिलकर मशवरे से शुरू किया था, अब वो तय हो गया है तो अब सर दे दिया है तो सर निकालते क्यों हैं, छत नीचे गिर जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी। पिलर कहे कि हाँ मैं पिलर बनना चाहता हूँ, छत मेरे ऊपर रख दे, जब छत रख दी तो पिलर कहे नहीं जी मैं निकलना चाहता हूँ, तो छत सर पे, सर से कहाँ आएगी, नीचे गिर जाएगी, इमारत खत्म, क्लास खत्म। अगर कुछ लोगों का हिस्सा है क्लास के खड़ा करने में, बनाने में, तो उसके गिराने में भी कुछ लोगों का हिस्सा है ना। तो ये तंबीह है कि हम सोचें कि हम क्लास की रौनक, इज्तमाईयत, ये कितना अच्छा काम हो रहा है, हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और मैं छुट्टी कर लेती हूँ जरा सा, अब दिल नहीं चाह रहा, रात को बैठे रहे देर तक। एक तालिबे इल्म कहने लगा कि रात 1 बजे तक 2 बजे तक जाना जागता रहा हूं, मैं अब कल नहीं क्लास में जाना चाहता। ये आप क्यों जागे रात को 2 बजे तक, आप वीक डेज में क्लास के दिनों में आपने इधर उधर की एक्टिविटीज क्यों की, आप क्यों नहीं अपनी एक्टिविटीज को कम करते। इसलिए कि दुनिया का जहां तक तालिबे इल्मी है, या दुनिया का काम है, या बिजनेस है, तिजारत है, सुबह 9 बजे, यानी रात को लोग 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, इसलिए कि जी वो कल बिजनेस है, कारोबार है, बच्चों ने स्कूल जाना है। जब आपकी कुरान की क्लास है तो आप जल्दी वक्त पे क्यों नहीं सोते, आप वक्त पे अपने कामों को समेट कर रखते क्यों नहीं है ना? फिर थोड़े दिनों की बात है, सीख जाएंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। तंबीह है कि इजाजत जो लोग ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बहाना बनाया, उनका उजर ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है, इंफरादी जरूरत को उन्होंने इज्तमाईयत पर मुकदम तो नहीं समझ लिया। अगर ऐसा है तो ये गुनाह है, उन्होंने गुनाह किया है। कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इजाजत देकर, आप इजाजत देकर फारिग नहीं हो गए, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, अब आप इनके लिए, लोगों से, इन लोगों के लिए आप अल्लाह से अस्तगफार तलब करें। इजाजत देने ही नहीं बल्कि इजाजत दे देने के साथ साथ आप ये भी कहें अल्लाह तुम्हें माफ करे। हो सकता है कि अल्लाह उनको पकड़ ले, है ना, हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पकड़ हो जाए। और आप सोच लें कि अब तक की जिंदगी में इज्तमाईयत के कितने मौके हैं कि बगैर उजरे शरई के दुनिया हम पे गालिब हुई, तो दुनिया को दीन पर मुकद्दम समझा, और उसके बाद जो है वो हमने इज्तमाईयत को छोड़कर इंफरादियत को जब मुकद्दम समझा, तो हमने इज्तमाईयत के जो प्रोग्राम थे या क्लास थी उसको जब हमने छोड़ा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब क्या करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मगफिरत कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की तरफ से इन पर पकड़ नाजिल हो जाए। और आप देखें कि बाज़ औक़ात जिस काम के लिए आप रुख्सत करते हैं वो काम भी नहीं होता, और फिर अफसोस होता है ना। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो जिम्मेदारान हैं, जो सरबराह हैं, जो अमीर अमीरा हैं, नाजिम नाजिमात हैं, या जो मीर महफिल हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, उनको कहा जा रहा है कि सिर्फ इजाजत देकर जो है वो छोड़ ना दो, बल्कि इनके लिए अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, साथ साथ अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तू इनको माफ कर देना। उनसे कहो कि अल्लाह ताला तुम पर जो है वो रहम करे, अल्लाह तुम्हारा ये जो इजाजत का मामला है अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो माफ कर दे। तो ये बात जो है ये बहुत अहम है। और यहाँ पे निचोड़ क्या है बात का, कि कहीं दीन पर दुनिया को गालिब तो नहीं कर लिया, अगर उसका अदना सा भी शाइबा है तो। और बाज़ औक़ात अच्छे लोग होते हैं, मुखलिस होते हैं, क्लास का सरमाया होते हैं वो लोग, लेकिन ये है कि जब वो भी इजाजत हैं, जब मांगते हैं तो क्या है कि ऐसे मुखलिसीन के हक में दुआ मांगी जाए, क्योंकि अस्तगफार की कसरत या अस्तगफार की वजह से वो नक्स जो है, वह जो जो मुखलिस से जो खता हो गई, जो उसने انفرادی زندگی کو ہم سمجھا تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نقص کو دور کر دے، اس کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو 63 ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام صحابہ کے اندر کتنا ہونا چاہیے، ہے نا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں، جب پکاریں، تو صحابہ جو ہے ان کے پکارنے کو کیا سمجھیں. یہ ادب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک طرف آپ کی اجازت کے بغیر اٹھ کر آ نہیں سکتے، ہے نا، چلے جانا ممنوع ہے آپ کی اجازت کے بغیر، تو دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ بلائیں، آپ پکاریں، تو پھر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ کہا لا تجعلوا، نہ سمجھو دعا اور رسولی، رسول کے بلانے کو، رسول کے بلانے کو مت سمجھو بینکم، آپس میں، یعنی اپنے اندر، اپنے درمیان، اپنا اندر، اپنا درمیان. تو مسلمانوں، رسول کے بلانے کو آپس میں جو ہے وہ اپنا درمیان نہ سمجھو. کیسے؟ کا دعا عبادکم بادا، گویا کہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ تم بلاتے ہو، بعدکم بادا، ایک دوسرے کو آپس میں. قد یعلم اللہ الذین، تحقیق اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم، جو تم میں سے خاموشی سے چل دیتے ہیں. یتسللون، سین لام لام کا معنی کیا ہے؟ کہ جو چل دیتے ہیں، چپکے سے چل دیتے ہیں. اور آپ جو ہے یہ جانتی ہیں اس بات کو کہ سین لام لام جو ہے اس کے معنی کیا ہیں. جیسے یعنی ایسے نکل کر کھڑے ہونا کہ بالکل جو ہے خاموشی سے کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ میان سے جو ہے وہ تلوار کو نکالنا، یعنی اس طرح سے نکل کر جو ہے وہ کھڑے ہو جانا. اور کیا ہے؟ لوازا، یعنی اصل میں لام واو زال کے معنی کیا ہیں؟ جیسے پہاڑ کی آڑ لینا، یا پہاڑ کی اوٹ کے میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ چپکے سے نکل جاتے ہیں، آڑ لیتے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہوئے، یعنی ایک نکلا تو دوسرا بھی نکلا، اور ایک نے بہانہ بنایا تو دوسرے نے بھی ساتھ جو ہے وہ بہانہ بنایا. فلیحذر الذین، بس چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ، یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، ان امر ہی، اس کے حکم کی. تو ہی جو ہے یہاں پہ ہی کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے. کیوں ڈرے؟ ان تصیبہم فتنۃن، کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں کوئی فتنہ ان پر نازل نہ ہو جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان پر جو ہے کوئی دردناک عذاب جو ہے وہ نہ آ جائے. تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بادا، کہ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا بلانا جو ہے وہ نہ سمجھ بیٹھو. یہاں پہ جو دعا لفظ ہے نا، اس کے جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ تین مطلب ہو سکتے ہیں، اور تینوں ہی درست ہیں. ایک اس کے معنی تو یہ ہیں کہ جیسے دعا کے معنی کیا ہیں کہ بلانا، تو رسول کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے بے تکلفی کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلاتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ آپس میں صحابہ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے، ہے نا؟ تو कैसे बुलाते थे? जैसे किसी को जब बुलाया जाता है तो क्या कहा जाता है? या उमर, या अली, या उस्मान, या खालिद, या हामिद, है ना, उसका नाम लेके जो है पुकारा जाता है ना। तो आम लोगों की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर जो है वो ना बुलाया जाए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ऐसे ताजीमी अलकाबा से उनको जो है वो याद किया जाए, है ना। तो एक इसके मानी जो हैं वो ये हैं कि बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पुकारा जाए। दूसरे इसके मानी क्या हैं कि अगर रसूल तुम्हें बुलाएं, दुआ रसूली से मुराद क्या है कि रसूल का बुलाना, अगर रसूल तुम्हें बुलाएं तो उस बुलाने को हकीर या मामूली ना समझो। जब रसूल तुम्हें बुलाए तो यूं ना समझो जैसे कि कोई आम आदमी तुम्हें बुला रहा है ना, आम आदमी मुझे बुला रहा है, जाऊं कि ना जाऊं, बल्कि क्या है कि रसूल के बुलाने को आम ना समझो, फौरन हाजिर हो जाओ। क्योंकि जब आम आदमी बुलाता है तो दिल चाहे तो इंसान जवाब देता है, दिल चाहे तो जवाब ही नहीं देता, दिल चाहे तो उठता है और दिल चाहे तो उठता ही नहीं है, है ना। जैसे आप देखें कि घर के अंदर बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये काम कर दें भाई, ये चीज ला दें, कोई बहन भाई को कहती है, भाई बहन को कहता है, बच्चे उठते ही नहीं है, सुनते नहीं है। अब ये कि फिर जब होता है अम्मी बुला रही है या अबू बुला रहे हैं, अब फौरन बच्चे उठते हैं ना, कि अब मैं बता रहा हूँ कि या बता रही हूँ, अम्मी ने कहा है, अबू ने कहा है, तो बच्चे उसको तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बात कही जा रही है कि रसूल का बुलाना आम आदमी का बुलाना नहीं है। अब ये नहीं कि जी चाहे तो तुम जवाब दो, जी चाहे तो ना दो, जी चाहे तो तुम हाजिर हो जाओ और जी चाहे तो हाजिर ना हो, बल्कि क्या है, फौरन लबैक कहो। वाजिब है तुम पर कि जब रसूल तुम्हें बुलाए तो फौरन जो है तुम उसका जवाब दो, है ना। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दाअकुम, ए ईमान लाने वालों तुम जवाब दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, इज़ा दाअकुम, जब तुम्हें बुलाया जाए। गोया के रसूल के बुलाने पर जो है वो फौरन जो है वो जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरा इसका एक और मानी है, और वो मानी जो है उससे क्या मुराद है, उससे उसका मतलब ये है कि रसूल की दुआ को तुम आम दुआ ना समझो। तो यहाँ पे ये जो दुआ है ना, ये जो हम दुआ करते हैं ना, ये उस मारूफ मानी में है। तो इसका फिर मतलब क्या होगा कि गोया के रसूल का दुआ करना या रसूल का बददुआ करना, इससे डरना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना और आपका बददुआ करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको आम आदमी की दुआ ना समझना। तुम्हारे हक में रसूल की दुआ से तुम्हारी दुनिया और आखरत संवर भी सकती है, इसी तरह उनकी बददुआ से दुनिया और आखरत तबाह बर्बाद भी हो सकती है। तो क्या करो, रसूल को खुश रखो, उनकी अताअत करो, उनके बुलाने पर लबैक कहो और उनसे दुआएं लेने की जो है वो कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि अगर तुमने रसूल से दुआ न ली तो फिर क्या होगा, दुनिया भी खराब और फिर आखिरत भी तुम्हारी जो है वो खराब हो गई। और आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कितनी मकबूल हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हुई और आपकी बददुआएं भी। आपको याद है, ये आपका होमवर्क है, आप 5 ऐसी जो है वो दुआएं ढूंढें। वैसे तो बहुत सी दुआएं आपकी जो भी आप दुआ मांगते थे कबूल हो जाती थी, वो तो आप कम से कम 5 दुआएं ढूंढें जो कि कबूल हुई, इसी तरह 5 बददुआएं भी, है ना। मसलन आप देखें कि आपने दुआ की थी कि ये जो दो उम्र हैं इन इनमें से किसी एक के जरिए इस्लाम जो है ना उसको शान शौकत दे, तो फिर कौन, इस्लाम किसने इस्लाम कबूल किया, उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने ना। तो दूसरा कौन था, अबू जहल, उसकी कुनियत थी तो अबू अमर। फिर उसके बाद जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवाए बदर के बारे में क्या कहा था? आपने जो है वो बदर के मैदान में कहा था कि फलां जो है इस जगह होगा, फलां इस जगह होगा, इस जगह, यानी बड़े बड़े जो मक्का के सरदार थे वो यहाँ पे गिरे पड़े होंगे, और बदर के मैदान में देखें कि वो लोग जो थे वो ढेर हो गए, बड़े बड़े सरदार, यानी जो कुफर के सरगने थे, है ना। फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आके दुआ मांग कही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें कि मेरे कारोबार में बड़ी बरकत हो जाए। तो आपने कहा था कि ऐ सालवा, वो थोड़ा माल जिसमें कनात हो, मैं आपको सूरह तौबा में ये वाक्या सुना चुकी हूँ, उस माल से बेहतर है जिसमें इंसान जो है फिर अल्लाह को भूल जाए, इस तरह के आपने कुछ अल्फाज कहे थे। उन्होंने फिर कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा माल की कसरत हो, दुनिया की ज्यादती की दुआ मांग चाह रहे थे। आपने फिर मना किया, तीसरी दफा उसने इसरार किया कि मेरे लिए दुआ करें, फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, और फिर जो थी फिर क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, कि फिर उन कहते हैं कि इतनी बकरियों की कसरत हो गई थी, उनका कारोबार माल इतना बढ़ गया था कि उसकी वजह से फिर वो मस्जिद नबी में 5 वक्त की पहले नमाज के लिए नहीं आ सकते थे, थोड़ी गैर हाजिरी शुरू हुई। फिर ये कि मस्जिद नबी में फिर बस जो थे वो सिर्फ जुमे के लिए आते थे। फिर उसके बाद क्या मामला था कि मस्जिद यानी नबी में गैर हाजिरी खत्म, यानी हाजिरी ही खत्म होगी, इसलिए कि मदीना में उनका रेवड़ संभलता नहीं था, मदीना से बाहर दूर जगह ले ली कारोबार के लिए, अब बिल्कुल मस्जिद नबी से और मस्जिद से महरूम हो गए। और फिर उन जो थे वो बाद में मतलब उन्होंने ज़कात देने से भी इनकार कर दिया था, और फिर जो है वो आपकी ज़कात जो अल्लाह के नबी ने जो कासिद भेजा था, जब उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो निफाक की वो मौत फिर मरे। तो क्या है कि दुआ तो मांगी लेकिन जो है वो अल्लाह के नबी की दुआ तो कबूल होनी थी। फिर आपको वो सहाबिया भी याद हैं जो काले कलोटे रंग की थी, उम्मे रफ, जिन्होंने कहा था कि जब मैं जो है मेरे पे ऐसा मिर्गी का दौरा पड़ता है कि मैं मेरा सतर खुल जाता है, तो कहा था मेरे लिए दुआ करें मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो आपने कहा था कि उम्मे रफ, तुम चाहो तो दुआ कर दूं और तुम ठीक हो जाओ, चाहो तो तुम सबर करो और अल्लाह उसके बदले में जन्नत दे दे। तो आपने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब वो सहाबिया राजी हो गई कि मैं सबर करूं और मुझे जन्नत मिले। तो आपने फिर कहा था कि ठीक है, आपने दुआ की कि अल्लाह ताला इसका सतर ना खुला करे ऐसे मतलब जब इसको मिर्गी का दौरा पड़े। तो कहते हैं कि बाद में मतलब सहाबा एक दूसरे को दिखाते थे, आओ मैं तुम्हें वो जन्नती औरत दिखाऊं, और एक दफा हजरत इब्ने अब्बास ने भी किसी से कहा कि आओ मैं तुम्हें जन्नती औरत दिखाऊं, तो खाना काबा की सीढ़ियों पर एक काले रंग की जो है वो औरत को दिखाया, तो जो बैठी हुई थी वो मेरफ थी ना, और फिर बाद में जब मिर्गी का दौरा पड़ता तो सतर नहीं खुलता था ना, तो दुआ आपकी जो है वो कबूल हुई। तो इसी तरह मक्का वालों पर कहत की दुआ आपने मांगी थी, है ना। फिर इसी तरह जो है वो अबू लहब के बेटे थे उतबा उतैबा, तो आपने आपने उनमें से किसी के लिए दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला उन पर जो है वो दरिंदों में से या कुत्तों में से कुत्ता जो है वो, आपने रहीकुल मख्तूम में पूरा वाकया तफसील से पढ़ा था, है ना। हाँ बस दुआ दी थी आपने, और फिर जो है वाकई वो सफर में था कहीं, और वो शेर ने आकर जो है वो उसको उस यानी सारे लोग और भी सो रहे थे, खास तौर पर उस पर आया। तो इस तरह हमें बहुत सी आपकी दुआएं और बददुआएं जो हैं वो पता चलती हैं जो कि कबूल हुई, और आप तो अल्लाह के नबी थे। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत के 3 मानी हैं। एक मानी तो ये है कि रसूल को ऐसे ना पुकारा करे, ना बुलाया करे जैसे कि आम लोगों को बुलाया जाता है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पुकारते हैं कुरान में, या अय्युहन नबीयु, या अय्युहर रसूल, है ना, बड़ी मोहब्बत का जो है वो अंदाज है। इसी तरह तो एक मानी तो ये है कि उनको अदब से बुलाया जाए, दूसरे मानी जब अल्लाह के नबी बुलाए तो फिर उसको आम ना समझा जाए, फौरन लबैक कहा जाए, उनकी बात मानी जाए, अतात की जाए। और तीसरे मानी ये है कि उनकी दुआएं ली जाए, उनसे बददुआएं ना ली जाए, है ना। और आज हम मुसलमान क्या करेंगे, हम वो काम ना करें जिन कामों के लिए या जिन अफराद के लिए या जिन अमलों की वजह से रसूल अल्लाह ने उनके लिए बददुआएं की, आज हम वो काम ना करें। क्योंकि आज लोग सोच सकते हैं कि अब हमें तो उनकी ना दुआ लग सकती है ना बददुआ, है ना। तो अगर हम ऐसे अमल करेंगे जिन अमलों की वजह से आपने सहाबा को दुआ दी, तो आज हम उसके मिसदाक बन सकते हैं। अगर ऐसे अमल करेंगे जिनकी वजह से आपने लोगों के लिए बददुआ की, तो फिर जो है वो बददुआ के मिसदाक बन सकते हैं। और फिर इसके बाद आयत नंबर जो 63 है, इसमें जो मुनाफिकाना रविश है उस पर अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं, उस पर अल्लाह ताला डांट रहे हैं। मुनाफिकाना जो रवैया है उस पर अल्लाह ताला जो है वो पूछ कर रहे हैं और कह रहे हैं कदिया अलमुल्लाहु लजीना, अल्लाह खूब जानता है उन लोगों को, यतसल्लुन मिनकुम, जो तुम में से जो है वो किसक जाते हैं, है ना, जो तुम में से जो है वो चुपके से निकल जाते हैं, जो तुम में से सिटक जाते हैं, जो तुम में से सटक जाते हैं। तो गोया के ये मुनाफिकीन की अलामत है, इज्तमाई कामों के लिए जब उनको बुलाया जाता है और आ तो जाते हैं चारों नजार, लेकिन फिर क्या करते हैं कि करना कुछ नहीं चाहते, अब वहां दिल भी नहीं लगता, तो फौरन वहां से चाहते हैं किसी तरह निकल जाएं, छुप छुपा कर, कोई बहाना, कोई उजर, कोई बात ऐसी घड़कर किसक जाते हैं वहां से। तो ये तसल्लुन मिनकुम, तो मुखलिस सहाबा रह जाते हैं, उनमें से निकल जाते हैं, लिवाजा, और निकलने का हाल क्या होता है, लाम वाल से आड़ पनाह, पहाड़ की ओट को भी कहते हैं ना, और आप देखें अगर पहाड़ की ओट में कोई आएगा नजर ही नहीं आएगा ना, तो एक दूसरे की आड़ लेते हुए, एक दूसरे की पनाह लेते हुए चुपके से वहां से निकल खड़े होते हैं। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि उनका मामला ऐसा है कि अब वो बाज़ जो है वो दूसरे का नाम लगाते हैं, है ना, कि असल में मैं तो नहीं जाना चाहती, फलां जाना चाह रहा है तो मैं भी अब चली जाऊं। फिर बाज़ एक बंदे की अपॉइंटमेंट होती है, क्लास खाली होने लगती है, है ना, एक शख्स को कोई उजर होता है, दूसरे भी, यानी उसको देखते ही कि वो उठा है तो साथ दूसरे लोग भी उठना शुरू हो जाते हैं, है ना। इससे इससे क्या मतलब है कि एक दूसरे की आड़ लेकर इज्तमाइयत का काम जो है वो उसको मुतासिर नहीं करना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, है ना, और बल्कि क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इज्तमाइयत के काम जो हैं वो मुतासिर ना हो। फल यहाज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रे, तो ऐसे लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, रसूल अल्लाह की मुखालफत से या आपका अमर यानी हुक्म को ना मानने से डरना चाहिए। तो जो लोग अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं मानेंगे, उनका जो बुलाना है उसका अदब और एहतराम नहीं करेंगे और चले जाएंगे छुप छुपा कर, या आएंगे नहीं, या आएंगे तो इजाजतें मांगेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर दो बातों में से एक बात हो सकती है, है ना, दो भी हो सकती हैं या दोनों में से एक, अन तुसी बहुम फितनतुन, कि कहीं उन पर जो है कोई फितना ना नाजिल हो जाए। तो फितना जो है वो इससे क्या मुराद है, इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फितने का मतलब है कि जालिम अल्लाह ताला उन पर मुसल्लत कर देगा, है ना। अब आप देखें कि जो लोग रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेंगे तो अल्लाह उन पर जालिम लोगों को मुसल्लत कर देगा। जालिम कौन हो सकता है, हाकिम, वक्त का हाकिम जालिम हो सकता है ना, किसी और कोई भी, कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है कि उस रिश्ते में वो उस पर जुल्म करने वाला हो, तो ऐसा ये फितना है जो उस पर नाजिल कर दिया जाएगा कि उस पर जो है कोई जुल्म करेगा। तो यहाँ पे फितना तुन जो है इससे मुराद क्या है कि जबरदस्त आफत उस पर आ जाएगी, और वो आफत जो है वो ये भी हो सकती है कि कोई जुल्म और जबर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर मुसल्लत कर दे, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको ईमान से महरूम कर दे, ये भी तो बहुत बड़ा फितना है ना, कि अल्लाह ताला जो है उनके दिलों में ईमान की बजाय कुफर और निफाक जड़ पकड़ ले। क्योंकि आप देखें कि जब आप बार बार जो है वो बहाने बनाएं इज्तमाइयत के कामों से उजर पेश करें, तो फिर नतीजा क्या होता है, फिर उन कुरान की महफिलों में भी दिल नहीं लगता, फिर मजा नहीं आता, है ना। तो इस बात का भी डर है कि दिलों में कुफर और निफाक जड़ पकड़ ले, और उनको ये जो बहाने बनाना है, निकल जाना है, यही उनको अच्छा लगने लगे, क्योंकि फिर शैतान गालिब होने लगता है, शैतान बसवास खन्नास वो खूब अपना काम करके दिखाता है। फिर जो है इसके अलावा और क्या हो सकता है, और युसीब अहम अजाबन अलीम, या उन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। तो और दर्दनाक अजाब जो है वो क्या हो सकता है ना, दर्दनाक अजाब में ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई सख्त आफत उन पर दुनिया में नाजिल कर दे, या फिर आखरत में दर्दनाक अजाब में वो लोग जो है वो मुब्तला हो जाएं कि जब अल्लाह के दीन को जरूरत थी, जब इस्लाम को जरूरत थी, तो उस वक्त ईमान लाने वालों ने जो है वो अपने आप को क्यों जो है वो बचाया, है ना। तो ये जो जहन्नुम का अजाब है, या ये भी हो सकता है दुनिया में कि ईमान की बजाय कुफर पर खात्मा हो, ये दुनिया का ये भी अजाब हो सकता है। तो करना क्या चाहिए, अमल करना चाहिए, अताक करनी चाहिए। पूरी सूरत अगर नूर को अगर आप देखें, एक तरफ ईमान और अहले ईमान की खसूसियात और औसाफ है, दूसरी तरफ मुनाफिक निफाक और उसकी खसूसियात है, यानी कुफर और निफाक। गोया कि एक जो है वो मुआजना है कि मोमिन कैसे होते हैं, मुनाफिक कैसे होते हैं और उनका कैसा किरदार होता है। और इसके अलावा आप इसको और आम भी कर सकती हैं, और इसे मुराद जो है वो क्या हो सकता है कि फितने में मुब्तला होने से मुराद के मुसलमानों में फिर इत्तेहाद ना रहे, इंतशार पैदा हो जाए। फिर ये भी हो सकता है इज्तमाई कुव्वत कमजोर हो जाती है। अब आप देख लें कि कितनी ज्यादा जो है वो जमाते हैं, कितने मसाजिद हैं, कितने मराकज हैं, कितना अल्लाह के दीन का काम हो रहा है, लेकिन ये कि नेट गेन नजर नहीं आता ना, आपस में मुत्तहिद नहीं है, इत्तहाद नहीं है, इंतशार है बहुत ज्यादा। उम्मत मुस्लिमा जो है वो कमजोर है, और उसकी वजह क्या है कि अतात नहीं है। अल्लाह ताला आखिरी आयत पूरी सूरत नूर का जो निचोड़ है वो क्या है कि वो आयात जो अल्लाह ताला ने पूरी सूरत में नाजिल की, और शुरू में भी अल्लाह ताला ने सूरत नूर के बारे में ये बात कही थी कि ये सूरत नूर जो है ये आम नहीं है, बल्कि क्या है, सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा व अंजलना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फर्ज किया है, और इसमें हमने साफ साफ हदायात जो है वो नाजिल किए, शायद कि तुम जो है वो सबक लो। तो आप देख लें कि हमने जब उतारा, हमने फर्ज किया, और आयात मुबैनात, आपका ये भी होमवर्क है कि नोट करें कि आयात मुबैनात का लफ्ज सूरत नूर में कितनी दफा आया, यानी आतिम बैनात या आतिम मुबैनात, या इस तरह से कि युबैनुल्लाहु लकुमुल आयात, आयात को जो खोल खोल कर मैंने बयान किया है, ये कितनी दफा आया है, मतलब ये सूरत का हुसन है या ये सूरत नूर की अहमियत है, ताकीद है कि अल्लाह ताला ने बार बार ये बात कही कि मैंने इसकी आयात को वाजे कर दिया है। तो अब क्या कहते हैं, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द। बड़ी खूबसूरत है कुरान की आयत, जब भी मैं इस आयत को पढ़ती हूँ ना, बहुत दिल अफसरदा होता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं अपना जायजा लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला एक आयत में इतनी खूबसूरत बात कहते हैं, इतनी जामे बात कहते हैं, और इतनी मुख्तसर और इतने हुसन से, और इस बात में कहते क्या हैं कि ए फलां, ए औरत, ए मर्द, ए लड़की, ए लड़के, ए मुसलमान, ए ईमान लाने वाले, कायनात में आसमान और जमीन, जो कुछ आसमानों और जमीन में है, वो सब अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, वो सब अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, वो अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हूं, मेरे अंदर बदअमली क्यों है, मेरे अंदर निफाक क्यों है, मैं पीछे रह जाने वालों में क्यों शामिल होती हूँ, मेरा दिल दुनिया में क्यों लगता है। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द। सुनो, खबरदार, याद रखो, आसमानों जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, यानी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की तौहीद के गुण गाए, अल्लाह की अताअत पे राजी हो, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इनका जगमग जगमग करना, ये रात और दिन का आना जाना, ये परिंदों का तस्बीह करना, ये बादलों का चलना, ये हवाओं का फिरना, ये मौसमों का बदलना, ये फलों का पकना, कायनात का जर्रा जर्रा इस बात पे राजी है, अल्लाह ने जो काम कह दिया है वो काम वो करते चले जा रहे हैं, और मैं जो अशरफ अल मखलूकात में से हूँ और आप जो अशरफ अल मखलूकात में से हैं जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया, अल्लाह ताला कहते हैं ए इंसान, ए मुसलमान, ए ईमान का दावा करने वाले, तुम भूल गए, तुम कहाँ रह गए, तुम कहाँ बैठ गए, तुम्हारा नाम तो मुस्लिम और मोमिन है, आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा मेरी अतात करे, तो तुम कहाँ पे हो, तुम क्या करते हो, तुम अमल क्यों नहीं करते, तुम बदअमल क्यों हो। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ध। एक दफा तिलावत करें तो यूं महसूस होता है ये आयत कह रही है कि जब पूरी कायनात अल्लाह की बंदगी कर रही है और उस पर राजी है तो ऐ मुसलमानों तुम भी बंदगी करो, और दूसरी दफा फिर आप तिलावत करें फिर इसको पढ़ें तो यूं महसूस होता है ये आयत पुकार रही है, इस आयत का हिस्सा ये कह रहा है कि याद रखना तुम अतात करो ना करो जाओगे कहां, सब कुछ आसमान और जमीन में जो कुछ है वो तो अल्लाह का है, वो अल्लाह की मलकियत में है। बदमलियां करके, कुफर करके, निफाक इख्तियार करके जब कह दिया कि निगाहों की हिफाजत करो और तुम हिफाजत जब नहीं करोगे, जब कह दिया कि तुम अपनी फुरूज की, तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो, तुम जिना ना करो, जब नहीं करोगे तो बचकर जाओगे कहां, जब कह दिया कि युबदीना अला जयूबहिन्ना यानी वो अपने जो जीनत है उसको वो जाहिर नहीं करती बल्कि क्या करती हैं कि जीनत को छुपाती हैं, अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डालती हैं, तो जो जीनत का इजहार करती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर उरियानी फुहाशी का एक सैलाब है, लोग गुनाहों में मुब्तिला होते हैं, तो जो लोग भी ऐसा करते हैं फिर वो गुनाह करके जाएंगे कहां, गुनाहों की गठड़ियां कंधों पर उठा उठा के। आयात को पढ़ लेने के बाद उसमें से पढ़कर बस गुजर जाएंगे तो लोग जाएंगे कहां। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। खबरदार सुनो, याद रखो आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, तखलीक अल्लाह की, हुक्म अल्लाह का, मलकियत अल्लाह की, खुदाई अल्लाह की, तो फिर मैं क्यों ना मैं और आप अल्लाह के हो जाएं। जब हजरत उमर ने एक रजी अल्लाह उन्होंने एक गडरिये से बकरी मांगी थी कि रेवड़ के मालिक को तो पता भी नहीं चलेगा, तो वो क्या कह रहा था, ऐना अल्लाह ऐना अल्लाह, उस बद्दू को ज्यादा नहीं आता था लेकिन वो ये कहना चाहता था कि मेरे मालिक को पता नहीं भी चलेगा तो मैं अल्लाह से छुप कर कहां चला जाऊंगा, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। मैं और आप अगर अतात नहीं करेंगे, अगर हम सूरत नूर को और कुरान को अपने ऊपर नाफिज नहीं करेंगे, ये खुली खुली आयात हैं, बहाने और उजर तराशेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम कहां जाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं जो कुछ है वो आसमान और जमीन में वो अल्लाह का है, तो फिर आइए मैं और आप भी अल्लाह के हो जाए, आइए ये दिल अल्लाह को दे दें, आइए इस दिल में ईमान को भर दें, आइए नूर अला नूर मेरा और आपका सीना बन जाए। और मेरा और आपका सीना जो है वो कैसा नूर बने, वो किस तरह से चमके। मसालो नूर ही कमिश्कातिन, गोया के जो है वो ताक हो, फी हमिसबा फिर उसमें चिराग हो, और चिराग भी ऐसे कि फी जुजाजा, ऐसी शीशा है कि चमक रहा है, और जुजाजा भी कैसा, कन्हा कौ कबुंदुरी चमकता हुआ सितारा। आइए अब अपने जो हमारे दिल जो है ना उसमें से कुफर निफाक को निकाल दे, शिर्क और कुफर के जाले साफ कर दे, चमकता हुआ कौकबुन दुरी उसको बना दें, और ईमान की, ईमान का तेल, कुरान का तेल, इस्लाम का तेल, उसकी रोशनी से ऐसे मेरा और आपका किरदार जगमग जगमग करे के नूर नला नूर, गोया के फिर हम नूर पर नूर, हर वक्त नेकी की तलाश, गुनाह गुनाहों की महफिलें, ऐसी सोबतें, ऐसी दोस्तियां, ऐसे रिश्ते नाते, उनसे फिर हम बचे। ये है असल बात। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अगर इतना पढ़कर, इतना समझकर और इस आयत पर आकर اگر آج میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد نہ کیا، اگر آج اپنا دل اللہ کو نہ دیا، اگر اپنے اس دست خاکی پر اللہ کے قرآن کو نافذ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ہم کبھی شوہر کا بہانہ، کبھی بچوں کا، کبھی غربت کا، کبھی وقت نہیں ملتا، کبھی میں مجبور ہوں، میں ابھی کر نہیں سکتی، کبھی مختلف، جب عمل نہ کرنا ہو تو بد عملی کے اور بے عملی کے 100 بہانے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر بھی ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تم کیوں نہیں عمل کرتے، تم کیوں نہیں قرآن کو چلتا پھرتا، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جاتے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہ وہ آیتیں تھیں جو صحابہ کے دلوں میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی تھی، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، وہ عمل کرنے لگے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور دنیا میں بہانے کر بھی لیے، قرآن پڑھ کر اس میں سے گزر بھی گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہ دن بھول گئے، یوم یرجعون الیہ، جب تم اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو گے. تو کیا فرمایا، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ الیہ، کہ پھر وہ لوگ جو ہیں اس دن کی طرف، اس دن اس کی طرف پلٹائے جائیں گے. تو یوم سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. تو یہاں پہ یرجعون جو ہے مضارع مجھول ہے، وہ خود نہیں جائیں گے، ان کو لے جایا جائے گا، ان کو پلٹایا جائے گا. یعنی گویا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ لٹائے جائیں گے، انسان جانا نہیں چاہے گا لیکن ان کو لے جایا جائے گا. اور جائیں گے کہاں؟ وہ دن جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگوں کو کہاں لے جایا جائے گا؟ الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ انا للہ ما فی السماوات والارض، کیونکہ جو ہے وہ اللہ نے جو کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ جو ہے وہ تخلیق کیا، تو اللہ اس کے بعد لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ حساب کتاب لے گا. تو لوگوں اس دن اپنی بدعملیوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنے نفاق کے ساتھ، کفر اور شرک کے ساتھ، بدعتوں کے ساتھ، غیر ضروری چیزیں جو اسلام میں آج مسلمانوں نے داخل کر دی ہیں، ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا، کہ ایک تو یہ کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کیا، وہ یوم، اور قیامت کے دن، یرجعون الیہ، اس دن جب اللہ کی طرف لوگ لے جائے جائیں گے، فینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو بتا دے گا، اللہ بتائے گا، عام نہیں ہوگا کوئی بتانے والا، اللہ بتائے گا، خبردار کرے گا، بما عملوا، کیا انہوں نے عمل کیے، اچھے کیے یا برے. جس نے عمل کیا اس نے کیا قربانیاں دیں؟ دین قربانی مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ قربانی مانگتا ہے، بغیر قربانی کے نہ رب کی رضا مل سکتی ہے، نہ جنت مل سکتی ہے، نہ مسلمان ہو سکتے ہیں. اس دن اللہ بتا دے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، کہ تم دنیا میں کیا تمہارا رویہ تھا، کیا کرتے رہے، کیوں سلام نہیں کیا، کیوں تم نے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازتیں نہیں مانگی، کھانے پینے کے آداب کا خیال کیوں نہیں رکھا، جو معذور تھے، جو بوڑھے تھے، جو بیمار تھے، ہے نا، اور آپس میں جو حقوق العباد عائد ہوتے ہیں ان کا خیال کیوں نہ رکھا، کیوں قرآن اور اسلام اور دین اور اللہ اور رسول کی جو ہے وہ اطاعت نہ کی. اس دن اللہ بتا دے گا، واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کس نے کیا کیا، کتنا کیا، اور کتنی اس کے اندر کمی ہے، اور کس مشکل سے کیا، اور کس نے کیا، تو کس جو ہے وہ آسانی سے کیا. تو اللہ تعالیٰ، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، واللہ بکل شیء علیم، یہ کیوں کہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال اور افعال ہی نہیں بلکہ دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے، نیتیں، ارادے. تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جہاں جزا دے سکتا ہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، پوری طرح سزا دینے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، तो अल्लाह का इल्म इल्मे मुहीत है। कोई चीज अल्लाह से जब बच नहीं सकती, जब अल्लाह जर्रा जर्रे का अमल खोलकर हमारे सामने रख देगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने दिलों को ईमान से मुनव्वर करना चाहिए। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल ईमान वल एहसान वनव्विर कुबूरना व अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इससे क्या बात पता चलती है कि असल चीज ये है ईमान, और उसके बाद जो है वो अमले स्वाहले है ना, और हमें जो है ईमान वाली सोहबतें इख्तियार करनी चाहिए। जैसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, इन अल्लाह खलक खलकहू फी जुल्मतिन तुम अल्का अलैहि मिन नूरिही फमन असाबहू मिन नूरिही यौमइज़िन इहतदा वमन अख्तहू दल। तो जिसको उस वक्त अल्लाह के नूर से हिस्सा मिला तो हदायत पर आया, और जो इससे भूला रहा तो वो गुमराह रहा। तो बात क्या है कि अल्लाह से उसका नूर जो है वो मांगना चाहिए, है ना। तो क्या कहना चाहिए कि अल्लाह हमें नूर दे दे, मैं हमारे ऊपर भी, हमारे नीचे भी, हमारे आगे भी, हमारे पीछे भी, अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।